आत्मानुशासन लेक्चर नंबर 78। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आय नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय रदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। पूज्य श्री गुणभद्र आचार्य रचित यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है, उस पर क्षुल्लक मनोजी वर्णी सहजानंद जी के प्रवचन हुए हैं, और उसमें द्वितीय जो पुस्तक है आत्मानुशासन प्रवचन, वो द्वितीय पुस्तक के पृष्ठ संख्या 74 पर हम आगे 74। यहाँ नीचे से दूसरा जो नीचे का दूसरा पैराग्राफ, विषय त्याग की अनिवार्यता। कल ये बात हो रही थी ना कि विषय में तो कल्पनाएं करता है, उसी में लगा रहता है, उसी में आनंद मानता रहता है। और कल एक उदाहरण देके बताया था कि जो सब पदार्थों को यथायोग्य जीवों को यानी अपने बच्चों को या किसी अन्य को पैसे देकर फिर निवृत्त होता है वो अच्छा, उससे भी अच्छा कौन सा है, वो उसका कुछ नहीं, वो तो छोड़ चला जाता है। और जो कोई उसको ग्रहण ही नहीं करता है विषयों को, तो पहले से वो तो उसका एक्सेप्ट ही नहीं करता। उसके बाद अभी यहाँ चल रही थी बात अपनी विषय त्याग की अनिवार्यता। अनिवार्य यानी वो करना ही पड़ेगा। देखो, विषयों के त्याग के बिना किसी का गुजारा नहीं चल सकता। आप कहेंगे हम कहाँ करें, हमारा गुजारा चल रहा है ना, गुजारा वो संसार का चल रहा है, मोक्ष मार्ग में नहीं लग सकता। जो विषयों में आसक्त है उनका भी विषयों के त्याग बिना गुजारा नहीं चलता। क्या कहा? मान लो कोई खाता ही जाए, खाना छोड़े नहीं, तो उसका गुजारा चल जाएगा, नहीं चल सकता। यानी वो पूछ रहे क्या चल सकता है, तो कहेंगे नहीं चल सकता, यह प्रश्न चिन्ह चाहिए। मान लो कोई खाता ही चाहे, खाना छोड़े नहीं, तो उसका गुजारा चल जाएगा, यानी उसके भी लिमिट तक ही वो भूख सकता है ना, उसके आगे भी नहीं चल सकता। यो ही सभी विषयों की बात है, सब विषयों को छोड़ने से ही गुजारा चलता है। यानी विषय भोगने की कुछ लिमिट है, वो तो कंटिन्यूस उसमें नहीं लगा रहता, वो तो छोड़ता ही है निश्चय से, नियम से। तो वे तीनों पुरुष, पहले जो बात हुई थी, उत्तरोत्तर विशिष्ट त्यागी हुए। यह तो हुई त्यागियों की उत्कृष्टता। अब जरा विषय कषायों की भी उत्कृष्टता देखो, कितना त्याग कषायों में होड़ मचाए हुए है। अज्ञान में विषयों की होड़, यानी वहां वो तो त्यागियों में कंपैरिजन की, अब यहाँ के विषयों की बात चल रही है। एक बार टोकरी में मल लिए जाते हुए भंगिन को देखकर तीन पुरुष उसके पीछे लग गए। किसी सज्जन पुरुष ने तो अच्छी तौलिया देकर ढक दिया था ताकि किसी को परेशानी न हो। वह भंगिन कहती है, भाई क्यों हमारे पीछे लगे हो? तब वे तीनों बोले कि हम देखना चाहते हैं कि तुम टोकरी में कौन सी चीज लिए जा रही हो, इसमें तो कोई बढ़िया चीज होगी। वह भंगिन कहती है, भाई लौट जाओ, इसमें मल है, गंदी चीज है। इतनी बात सुनकर उनमें से एक वापिस लौट गया, दो अभी तक पीछे ही लगे रहे। बंगिन कहते भाई लौट जाओ, क्यों पीछे लगे हो? तो वे कहते कि हमें तो दिखा दो, जब सही सही मालूम पड़ जाएगा तब लौटेंगे। बंगिन ने उस टोकरी से तौलिया हटा दी। उस मल को देखकर उन दोनों में से एक वापिस हो गया, एक अभी तक पीछे लगा रहा। उसे विश्वास न हुआ कि बंगिन सही कह रही है। बंगिन कहते भाई लौट जाओ, इस टोकरी में मल भरा है। तो वह कहता है कि हमें तो अच्छी तरह से दिखा दो, जब ठीक ठीक हमारी समझ में आ जाएगा कि यह मल है तब लौटेंगे, हमें तो लगता है कि इसमें कोई अच्छी चीज होगी। बंगिन ने बहुत समझाया कि इसमें मल है, पर वह नहीं माना। इसे तौलिया हटाकर अच्छी तरह से सूंघ सांघ कर उसने जांच कर ली कि वास्तव में यह मल है, तब वह लौटा। उत्तरोत्तर त्याग का विश्लेषण। जगत में सभी जीवों को ये विषय साधन छोड़ने पड़ेंगे, चाहे कोई मरकर छोड़े, चाहे भोगकर छोड़े, चाहे पहले से छोड़े। छोड़ेंगे तो सब, क्योंकि भोगकर भी छोड़ते हैं तो, क्योंकि छोड़ना ही पड़ता है ना। जैसा भी उदाहरण बताया ना, कितने टाइम खाएगा, खाते 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 फिर तो उसको तो उब जाएगा ना, वो तो बंद ही करेगा, भले वो दूसरे दिन फिर दोबारा खा जाएगा। देखिए तो उसको तो छोड़ने ही पड़ते हैं। मरकर कोई छोड़ता है, भोग कर छोड़ता है, चाहे पहले से छोड़ देता है, सबको ही विषय छोड़ने पड़ेंगे। ये वैभव संपदा जो मोह के साधन बनाए गए हैं, ये सब छोड़ने पड़ेंगे, चाहे कभी छूटे, रहेगा यहां कुछ नहीं। यो जगत में विचित्र विषय भोगी है और विशिष्ट प्रकार के त्यागी जन भी है। विचित्र ने अनेक प्रकार के, विषय भोगी के लिए विचित्र लिखा और त्यागी जन के लिए विशिष्ट प्रकार लिखे। हाँ, विशिष्ट प्रकार ने जो पहले तीन जनों की बात की थी ना, जो भोग करके फिर छोड़े हैं, किसी ने छोड़ दिए भुगते भुगते, नहीं उसकी व्यवस्था करके किसी ने छोड़ा, किसी ने इसे भी छोड़ दिया, किसी ने उसको ग्रहण ही नहीं किया, ये तीन प्रकार बताए थे कल, इसलिए विशिष्ट प्रकार बता रहे। उत्कृष्ट तो वे सभी है जो विषयों का परिहार कर दे, यानी विषय छोड़ने वाले सारे उत्कृष्ट है, उनमें से उन्होंने तरतमता बताई थी। जैसे कहते हैं कि दिन भर का भूला शाम को ठिकाने आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, ऐसे ही अपनी जिंदगी में कितने ही वर्ष बिता देवे, कितने ही खटपट आरंभ पाप वासना में अपनी जिंदगी बिता देवे चलो चलो देखो, ऐसे ही अपनी जिंदगी में कितने ही वर्ष बिता देवे, कितने ही खटपट आरंभ पाप वासना में अपनी जिंदगी बिता देवे, पर किसी दिन चेत हो, विरक्ति आ जाए, वह भूला हुआ नहीं है। यानी जब किसी को इस उसका विचार आता है, उसके इस पंथ में आ जाता है, तो कहते वो अच्छा है, क्योंकि कभी ना कभी तो इसमें आए तो ही उसका कुछ कल्याण होने वाला है। ठीक है, उसने अपना काम यहां बना लिया। जो भी पुरुष इन विषय साधनों का परित्याग करते हैं, वे तो उत्कृष्ट त्यागी ही है। देखो, यहाँ त्याग करने से केवल बाहरी छोड़ने की बात नहीं है, वो बारंबार आत्म तत्व की, निज आत्म तत्व की जिसको पहचान परिचय हुआ है, उसके साथ वाली ही बात समझना है। नहीं तो ऐसे तो बाल व्रत बाल तप तो करते ही आया अनादि से। उनमें अब यह छटनी कर लेना है कि जो पुत्र आदि को धन आदि देकर या जिसे देना है उसे बांटकर फिर त्याग करे, वह भी उत्कृष्ट त्यागी है। कोई पुरुष तो अंतर से किसी वस्तु का त्याग नहीं कर पाते हैं, उनसे तो यह भला है। त्याग किया एक तो ऐसे मनुष्य, दूसरे ऐसे मनुष्य है, किसी को देने बांटने का भी विकल्प नहीं करते, ऐसे समग्र धन यो ही त्याग कर चले जाते हैं। यह प्रश्न चिन्ह क्यों लगाए और फिर फुल स्टॉप भी दिया, वो प्रश्न चिन्ह नहीं चाहिए। यह पुरुष उनसे उत्कृष्ट है क्योंकि पहले उस वृद्ध पुरुष के कुछ कषायों का अंश था, उनसे कुछ अपना संबंध ही तो समझा, तब किसी को देने का परिणाम किया गया, किंतु यह भव्य किसी को देने तक का भी परिणाम नहीं कर रहा है, वह तो सबको यूं ही छोड़कर जा रहा है। यह पुरुष उससे भी उत्कृष्ट है, और कोई बालक बालिकाएं ऐसे कल्याण के अभिलाषी हो जो भोगने से पहले भोगे बिना त्याग देते हैं, वे उत्कृष्ट हैं। धर्म रुचि की उपादेयता। धर्म और ज्ञान की प्रीति करना और धर्म एवं ज्ञान का दूसरे जीवों के हित में प्रचार करना, यह कल्याण का मार्ग है। जिसे धर्म की और ज्ञान की प्रीति है उसको सहज ऐसा भाव आ ही जाता है, ये बात सब लोग समझे, नहीं तो लौकिक में कोई अपने मिल गए तो अपनी बात बढ़ाने की सोचता है, दूसरों को देने की या दूसरों को उसका पता बताने की, एडवाइस करने की किसी को नहीं सोचती है लौकिक में, क्योंकि उसको समझ जाए तो वो भी बड़ा अच्छा धंधा कर देगा, वो मेरे से अधिक पैसे वाला हो जाएगा, तो वहां अपनी ट्रिक किसी को नहीं बताएगा। यह संसार विषय कलुषता का परिणाम इतना कठोर है कि इसके त्यागते त्यागते भी इसके त्याग में सफल नहीं हो पाते। देखो क्या कहते हैं, धर्म रुचि उपादेय है, और ये क्या है, विषय कलुषता का परिणाम कितना है? कठोर है, उसको त्याग करना चाहता है उसमें सफल नहीं हो रहा है, ये कह रहे हैं। अपने परिवार में जो बालक जन हो, जो भी हो, उन सबके प्रति आपका कर्तव्य है उनमें धर्म भावना रहे, ऐसा उपाय बनाएं। वैराग्य, धर्म भावना, ज्ञान प्रकाश आदि परिवार के सदस्यों में है तो वह सुख शांति पूर्वक जीवन बिता सकेगा। यानी जिसको धर्म की रुचि है वो तो बच्चों को यही पहले में पहले, वो भले उसने लेट में वो अपनाया है या उसको मार्ग मिला है, उसको लगता है कि बच्चों को तो जल्दी मिले। जैसे लौकिक में माँ बाप को मान लेते ना, किसी कष्टमय जीवन से गुजरे हो, बहुत गरीबी से ऊपर आए हैं, तो चाहते अपने बच्चों को सभी सुविधाएं मिले, जो सब मैक्सिमम पॉसिबल उनको देने की कोशिश करते हैं। तो जो अपने सबसे उत्कृष्ट मार्ग जिसे मिला है, क्या वो नहीं चाहेगा अपने बच्चों को यही उत्कृष्ट मार्ग मिले, ये कह रहे। जिसको धर्म की रुचि नहीं है, ज्ञान और चारित्र से प्रेम नहीं है, ऐसे लोग कोई भी हो, वहां पद पद पर झगड़ा चलता रहता है। यानी जिसको ये ज्ञान और चारित्र का मार्ग जिसे मिला है तो उसके तो लौकिक जीवन भी शांतिमय सुखमय हो जाता है। जिसमें धर्म की वासना हो, लोक का जीवन भी बहुत बहुत अच्छी रीति से व्यतीत होता है और परलोक का सुख तो उसे प्राप्त तो होता ही है। धर्म की इच्छा, वासना, वासना ने केवल बुरी आदत, बुरी अर्थ में वासना ऐसे नहीं होता है। धर्म में आदि में मध्य में और अंत में सर्वत्र आनंद ही आनंद है, ऐसा नहीं कि शुरुआत में कष्ट है और बाद में आनंद है, ऐसा नहीं। उसमें धर्म शुरू होते ही उसी समय से आनंद ही प्रकट हो जाता है और वो बढ़ता ही चला जाता है। और धर्म भाव हो तो सर्व कुछ संपन्नता होकर भी उसे कष्ट अनुभवना नहीं पड़ता है, वह पुरुष विशेषतया धन्य है जिसमें इतना ज्ञान बल बढ़ा हुआ है, इन भोगों को न चाहकर न भोगकर पहले से उन्हें छोड़ देता है, उसका उत्कृष्ट होनहार है। उसकी बुद्धि विद्या चाहिए, विद्वा क्यों नहीं, सब उत्कृष्ट है, विद्या। सब उत्कृष्ट है जो विषयों से विरक्ति भाव रखते हैं, वे सर्वदर्शी होने के पात्र हैं। सर्वज्ञ कहो, सर्वदर्शी कहो, के बाद उदार पुरुषों की वृत्ति पर मोहियों को आश्चर्य। जो समस्त परिग्रहों को त्याग कर साधु संत होने की दीक्षा ले, उसने तो सब कुछ ही दान कर दिया। जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता, जिसको अपने चित्त में स्वार्थ नहीं है, उसने तो सब कुछ दान कर दिया। आत्मकल्याण की दृष्टि से देखिएगा, जो पुरुष समग्र परद्रव्यों से भिन्न निज स्वरूप मात्र अपने को अवलोकता है, उसका सर्व कल्याण होता है। इस पर मोहियों को आश्चर्य लगता है, ऐसी बड़ी संपदा, लाखों करोड़ों अरबों का धन प्राप्त करके फिर यह सब छोड़ जाते हैं। कैसे छोड़ जाते हैं? उन्हें उनकी वृत्ति पर आश्चर्य होता है। ठीक है, विचित्र बीमारी। एक बार किसी कंजूस ने नगर में जाते हुए किसी सेठ को अन्न कपड़ा बांटते हुए देख लिया था। यो ही यह धन लुटाया जा रहा है, ऐसी दृष्टि करके उसे खेद हुआ। यानी स्वयं तो नहीं करता है, परंतु उसमें भी उसको यानी अनुमोदना भी नहीं है, तो उसको खेद हो रहा है। जो लोभी पुरुष है वह खुद भी त्याग नहीं कर सकता है, और त्याग करते हुए दूसरों को देख भी नहीं सकता है। वह कंजूस बड़ा उदास चित्त होकर घर आया। उसके सिर में दर्द होने लगा था। उसकी स्त्री पूछती है कि हे लक्ष्मी पुत्र, तुम आज उदास क्यों हो? लक्ष्मी पुत्र जानते हो किसे कहते हैं? जो इस धन संपदा को माता की तरह रखे उसका नाम है लक्ष्मी पुत्र। जैसे पुत्र माता को भोगता तो नहीं है, ऐसे ही जो इस संपदा को भोग न सके, खर्च न कर सके, जो अति कंजूस है, वह तो लक्ष्मी का पुत्र है। लक्ष्मी पति होना और बात है, लक्ष्मी पुत्र होना और बात है। वैसे भी बताया है। वैसे भी बताया है, इस लक्ष्मी की सवारी उल्लू है। उल्लू उसकी सवारी है। सवारी है ना उसका वाहन, वाहन। अभी क्या बताते बताए मैं मालूम नहीं। जैसे अलंकार में सबकी सवारियों का निर्णय है। ये क्या कह रहे हैं देखो तो सही। जैसे अलंकार में सबकी सवारियों का निर्णय है, गणेश की सवारी चूहा है यानी उसका वाहन। महादेव की सवारी बैल है, ऐसे लक्ष्मी की सवारी उल्लू है। स्त्री बोली, हे लक्ष्मी पुत्र, क्या हो गया? तुम क्यों उदास चित्त हो? नारी पूछे सूम से, काहे बदन मलीन, क्या तेरो कुछ गिर गयो या काहू को दीन? क्यों चित्त उदास है? तेरा कुछ गिर गया है क्या, या तूने किसी को कुछ दिया है क्या? तू क्यों उदास है? तो सूम कहता है, यह ना, नारी पूछे सूम से, तो उसका नाम होगा सूम। ना मेरो कुछ गिर गयो, ना काहू को दीन, देतन देखो और को तासो बदल मलिन। बदन, बदन चाहिए, बदन मलिन, ऊपर बदन आया था ना। ना मेरा कुछ गिर गया, ना मैंने किसी को दिया, दूसरे को देते हुए देखा, इसलिए मैं मलिन दिख रहा हूँ, यानी उदास दिख रहा हूँ। भोग के त्याग में ही उत्कृष्टता। जो पुरुष भोग कर भी त्यागे वह भी उत्कृष्ट है। बिना भोग भोगे त्यागे वह भी उत्कृष्ट। जो पुरुष जब छेद जाए, जब निर्विकार हो सके, तभी भला। जो अब से असंख्यात वर्ष पहले सिद्ध भगवान हुए हैं, वे भी जगत में अनंत काल भटक कर हुए हैं। असंख्यात वर्ष को अनंत वर्ष पहले भी ले लो तो भी यही बात है। जो जो सिद्ध है वो पहले संसार में भटक रहे थे। इस समय जो जीव आज दिख रहे हैं, वे तो संसार में भटक ही रहे हैं। जो जब चेत जाए, समझो उसका वही सवेरा और उसका उतनी जल्दी भला हो गया है। जिस जिस वस्तु में मोह किया जा रहा है, जो लोग मोह किए जा रहे हैं, वे स्वयं ही अपने आप को क्लेश के गड्ढे में पटकते जा रहे हैं। यह मोह का अंधकार, यह ज्ञान का अंधेरा इस जीव को शांति नहीं जाने दे सकता। खूब अपने आप के अंतः मर्म में प्रवेश करके सोच लो, हम प्रभु की भक्ति करें, पूजा करें और इस पौद्गलिक विभूति से ममता न हटे, उसे अपना देवता मानते रहे, तो हमारी भक्ति पूजन कहाँ विराजेगी? ना भगवान की नहीं भक्ति हो रही है, तो वैभव की, धन की हो रही है। जब स्वपर वस्तु के प्रसंग में, ज्ञान प्रसंग में ज्ञान प्रकाश ही नहीं जग पा रहा है और पर पदार्थों में यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार का भाव किया जा रहा है, तो उसे चैन मिलेगी कहाँ से? ज्ञान प्रकाश पाए और इन जड़ पौद्गलिक विभावों को विनश्वर भिन्न जान ले, कुछ अपनी ममता को ढीली करे, तो कल्याण का मार्ग मिलेगा। अन्यथा यह पाया हुआ दुर्लभ मनुष्य जीवन बिल्कुल बेकार खोया। कितना दुर्लभ है वो तो बहुत बार बता चुके हैं। मोह त्याग में ही दुर्लभ समागम की सफलता। भैया, यदि पर पदार्थों के प्रति ममता में ढिलाई नहीं की जा सकती है, तो किसका माया यह नरदेह? यानी उसका क्या उपयोग हुआ आपको? क्या किस काम का है वो? किस काम आया यह जैन शासन का एक वातावरण? किस काम आया यह प्रभु भजन? जबकि इसके चित्त में पर पदार्थों से उपेक्षा ही नहीं जग पाती है, पर में रले मिले ही चले आ रहे हैं, घुलमिल रह कर रहने की आदत बनी हुई है। ये जड़ वैभव संपदाएं जो अपनी ओर से कोई राग भरी वाणी नहीं बोलते हैं, क्या कहा, वो वैभव नहीं कहता है मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, वहां तो यह कंजूस इस मोह का अपने ही आप की ओर से एकाकी रहकर एकाकी ही प्रयत्न कर रहा है। यानी धन की ओर से कोई उसमें प्रयत्न नहीं है, वो तो जड़ है ना। अपने आप के अंधेरे में और क्लेश गर्त में डालने के लिए। भाई, सब कुछ छूटेगा तो जरूर, अभी से कुछ उदार चित्त बना लो, कुछ अपने जीवन में इस वैभव से युक्त रहने की आदत बना लो, अन्यथा मरण समय में अत्यंत क्लेश होगा। हम वैभव से मुक्त के युक्त अभी से कुछ उदार चित्त बना लो, कुछ अपने जीवन में इस वैभव से मुक्त रहना। हाँ ना, मुक्त होना चाहिए। अन्यथा मरण समय में अत्यंत क्लेश होगा और आगे जन्म लेकर वहां भी सारे जीवन भर अपने को कष्ट में ही लगाना पड़ेगा। इससे त्याग की आदत डालो, त्याग का भाव बनाओ, मोह में ढिलाई करो, इससे ही कल्याण का मार्ग मिलेगा। 103 नंबर, पहले जांच लेते हैं बराबर है कि नहीं। आपने देखा क्या बराबर है? चलो ठीक है। विरज्य संपदः संतस्त्यजन्ति किम इहाद्भुतम् मावमित। हाँ, जुदा चाहिए, मा इन्हें मत करो, मावमित किम जुगुप्सावान सुभुक्तम अपि भोजनम। हाँ, इसमें से पढ़ना है ना अर्थ पहले। हाँ, टोडरमल जी के उसमें से, हाँ श्लोक भी पढ़ना है, श्लोक पढ़ना है, मैंने केवल उसको करेक्शन किया। श्लोक है उसमें, विरज्यसम्पदः सन्तस्त्यजन्ति किमिहाद्भुतम् मावमित्किं व्युप्सावान् सुभुक्तम् अपि भोजनम्। अर्थ, सत्पुरुष है ते विरक्त होई करी संपदानी को छोड़े है, यानी छोड़ते हैं। सो यहाँ कहा आश्चर्य है, यानी इसमें क्या आश्चर्य है, ग्लानी सहित पुरुष है सो भले प्रकार भक्षण किया हुआ भी भोजन को कहा वमे नाही अपितु वमे ही है। क्या कहना चाहते हैं, ग्लानी सहित यानी कोई अंदर से ऐसी कुछ ग्लानी हो जाए, मराठी में कहते ना किरसेना जुगुप्सा, हाँ जुगुप्सा होने पर अच्छा खाया हुआ भी निकल जाता है। भावार्थ, राग भाव होता ही तो त्याग किए दुख ही है, यानी यदि उसके प्रति राग है तो त्याग होने पर दुख होता है, दुख सहना कठिन है। ताते ही सरागी पुरुष त्याग करे तो तहां आश्चर्य मानिए, इसलिए जो रागी है उनको दूसरों का भी त्याग देखकर आश्चर्य लगता है। बहुरी विरागता भये त्याग करने में किछु खेद नहीं सुख हो है, जो विरागी है उनको राग ही छूट गया है तो उनके उसमें कोई खेद नहीं हो रहा, सुख हो रहा है, और सुख को कौन न चाहे। ताते ही विरागी पुरुष त्याग करे तहां किछु भी आश्चर्य नहीं, वो सुख के लिए कर रहे उसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। जैसे काहू ने भोजन किया था और वाक्य ऐसी ग्लानी भई इस भोजन ते मेरे प्राण जाएंगे, तब वह पुरुष उस भोजन का उपाय करी भी वमन करे, तैसे मिले हुए भी विषयनी विषय इनके सेवन ते मेरा बुरा होएगा ऐसी उदासीनता आए उपाय करी भी तिनका त्याग करिए है, यहाँ किछु आश्चर्य नाही। यानी अगर पता चलेगी कि हमने खाए हुए में कुछ चीज ऐसी जिसको भी ना विचारी है या कोई ऐसी कुछ गलती से कुछ गोलियां भी खा ली किसी ने, तो क्या जबरदस्ती वॉमिटिंग करा के वो सब निकाल देते हैं, जैसे क्यों वो तो अनिष्ट, हाँ अहितकारी है। ऐसे कहते हैं विषय कशा अहितकारी है, ये धन वैभव अहितकारी है, तो इतने प्रयत्न करके भी उसको त्याग कर देते। अभी यहां से पढ़ेंगे 77 पृष्ठ नीचे 103 का अर्थ, संतों का वैराग्य पूर्वक त्याग। ज्ञानी संत पुरुष बड़ी उत्कृष्ट भी पाई हुई संपदा को त्याग देते हैं। संत कहने से वो मुनि नहीं लेना, क्योंकि मुनि क्या त्याग करेंगे, तो वो त्याग करके मुनि हुए हैं, इसलिए जब संत कहेंगे तो ज्ञानी सज्जन इस तरह से संत गृहस्थ। पाई हुई संपदा को त्याग देते हैं, इसमें से कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उनको इस पर में विपत्ति में रुचि नहीं जगी। क्या कहा इसको, विपत्ति, धन को वैभव को विपत्ति कहा, और उसमें ग्लानी बनी रही। किसी भी पर पदार्थ पर देते हुए उपयोग में आत्मा का हित नहीं है। अशोभनीय और अयोग्य काम में रुचि न होने से यह संपदा छूट ही जाती है। यानी जो उपयोग पर में लगता है उसमें आत्मा का हित नहीं है। अब इसको किसी अशोभनीय और अयोग्य काम में तो रुचि नहीं है, कहीं अन्य कार्य करने की उसको रुचि नहीं है, तो यह संपदा छूट ही जाती है। और देखो छूटेगी तो सारी संपदा किसी के भी पास सदा न रहेगी, यह ही मरण करके चला जाएगा, फिर क्या है यहाँ का इसके लिए। लेकिन जो अपने जीवन में ज्ञान के बल से संपदा को छोड़ देते हैं और ज्ञानानंद स्वरूप निज अंतस्तत्व में प्रवेश करके शांत रहा करते हैं, ये सत्पुरुष धन्य है। इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है कि ऐसे बड़े पुरुष भी अलौकिक राज्य और वैभव संपदा को भी त्याग देते हैं। जैसे ग्लानी सहित भोजन किया गया हो तो उसे वह पुरुष क्या उगल नहीं देता। कोई पुरुष ग्लानी सहित भोजन करे, यह भोजन ठीक नहीं है, विषैला है, या अन्य कुछ बात ध्यान में रखकर ग्लानी सहित भोजन करे, रुचि न जगे, तो उस भोजन का वमन कर देता है। अथवा वह ऐसी औषधि खाता है जिससे वह किया हुआ भोजन उगल जाए, वह अपने उदर में रखना नहीं चाहता। इसी प्रकार ग्लानि सहित इस वैभव संपदा को रखने वाला, भोगने वाला यह ज्ञानी पुरुष उस वैभव संपदा को त्याग ही देता है। यानी पहले भोगते हुए काल में भी उसके प्रति उसको उदासीनता है, ग्लानि है, उसके प्रति उसको रुचि तो बिल्कुल नहीं है, उल्टा है, अरुचि है, तो उसको छोड़ ही देता है। देखने वालों को तो वैभव में प्रचा पचा दिख रहा है, परंतु उसको उसके प्रति लेश मात्र भी राग आसक्ति नहीं है, तभी तो वो छोड़ सकता है ना। वैराग्य में त्याग का निभाव। भैया, जब राग भाव रहता है तब त्याग करके दुख मालूम होता है। इसी कारण से सरागी पुरुष वहां आश्चर्य मानते हैं कि इसने वैभव कैसे त्याग दिया। जिसके विरागता उत्पन्न हुई उसको त्याग करने में कुछ भी खेद नहीं होता, बल्कि उस परवस्तु के त्याग से अपने आप की ओर झुकाव अधिक बढ़ता है। उससे वह विशुद्ध शाश्वत निराकुल आनंद ही चाहता है और कुछ नहीं चाहता। पर इस विशुद्ध आनंद की झलक उसी को ही होती है जो पर को पर जानकर, देखो ये महत्व की बात है, केवल बाहर से त्याग दिया की बात नहीं है, बार बार तो पहले से कहे आए हैं ना। देखो, विशुद्ध आनंद की झलक उसी को होती है जो पर को पर जानकर, पर से उपेक्षा करके निज आत्म स्वभाव को शरण मानकर उसकी ओर झुके। कैसे न झुके, झुके चाहिए ना। पर इस विशुद्ध आनंद की झलक उसी को ही होती है
जो पर की पर जानकर, पर से उपेक्षा करके
न झुके चाहिए के झुके चाहिए। निजे आत्म शरण मानकर उसकी ओर यानी पर की ओर न झुके। हाँ, उसकी यानी पर की। पर की ओर न झुके और अपनी ओर झुके। हाँ, कितनी स्पष्ट सी बात है, जरा से विवेक से भी समझ में आ जाने वाली बात है। यह सब कुछ भिन्न है, अहित है, कुछ संबंध भी नहीं है। भला बतलाओ, इस भीत की ईंटों से आपका कुछ ताल्लुक है क्या, कोई संबंध है क्या, कोई रिश्तेदारी है क्या? यो ही किसका पैसा? इस भाव में तो कुछ नहीं कमाया, जो आया है वो तो पहले के कुछ पुण्य किया होगा उसे आया है, अभी तो उसके लिए पाप किया है। क्यों? इच्छा थी ना, इतना लाओ इतना लाओ इतना लाओ, तो ये मुझे मिले मिले मिले, उसकी तो सतत लोभ हो रहा है, नया पाप बांध रहा है उसमें। तो क्या कहते हैं कि इस बीत की ईंटों से आपका कुछ ताल्लुक है क्या, कोई संबंध है क्या, कोई रिश्तेदारी है क्या? यूं ही इस वैभव को भी सोचिए कि यह आपका कुछ लगता है क्या। अरे लगता तो यह देह भी कुछ नहीं है, इसे भी त्याग कर जाना पड़ता है, फिर अन्य वैभव की तो बात ही क्या। बिल्कुल अपने को सबसे जुदा निराला समझ लो ना, जान लो, उसमें तो आनंद ही आनंद है। भले बाह्यता सब कुछ आपकी जो लौकिक जो जीवन है वो वैसा ही चलता रहे। आनंद का आधार ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य में जो आनंद बसा है, आनंद वही है, इसके अतिरिक्त तो सारे क्लेश ही क्लेश है। भ्रम से मान लिया कि सुख है, पर की आधीनता स्वीकार करके नाना क्लेश ही क्लेश भोगे जाते हैं। तिस पर भी बुद्धि पर ऐसी धुन बनी रहती है, पर को ही सर्वस्व और हितकारी माना जाता है। यथार्थ ज्ञान बना रहना इससे बढ़कर अन्य कुछ भी वैभव नहीं है। बना रहना, होना केवल नहीं, बना रहना, क्योंकि हमने देखा था बना हुआ भी छूट जा सकता है। यथार्थ ज्ञान बना रहना, इससे बढ़कर अन्य कुछ भी वैभव नहीं है। आत्मा का शरण सहायक सम्यक ज्ञान ही है, अन्य कुछ नहीं है। जब कभी यह मनुष्य इष्ट का वियोग होने पर घबराता है तो उसे इसका ज्ञान ही सहायक होता है, दूसरा कोई पुरुष सहायक नहीं होता। संबंधी जन उसे बहुत समझाते हैं, छोटा हो भतीजा हो उसे गोद में लेकर समझाते हैं, सिर पर हाथ फेर कर, लेकिन उसकी समझ में आए तब ना वह दुख छोड़े, उसके ही ज्ञान जगे और यह बात स्पष्ट समझ में आए कि मेरा तो कहीं कुछ था ही नहीं, न है न होगा, मैं तो अपने स्वरूप से परिपूर्ण सत हूं। यानी अपने को उसने तो कभी परिपूर्ण माना ही ना, मैं तो अधूरा हूं, मैं तो हीन दीन हूं, मैं तो वैभव से हीन हूं, मुझे इतना धन आ जाएगा तो मैं कुछ परिपूर्ण हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। लेकिन मैं तो अपने स्वरूप से परिपूर्ण सत हूं, अपने ही स्वरूप मात्र हूं, मेरा तो मेरे स्वरूप पर ही अधिकार है, अपने स्वरूप के सिवाय अन्य किसी पर जीव पर, अन्य किसी पर पदार्थ पर मेरा रंच भी अधिकार नहीं है। यह बात जब समझ में आए तब दुख मिटेगा, दूसरों की कोशिश से दुख न मिटेगा। यो ही अन्य और क्लेश आ जाए, उन क्लेशों में भी इस आत्मा का सम्यक ज्ञान ही शरण है, ज्ञान में अद्भुत बल है। इसी प्रकार वैराग्य में भी अद्भुत बल है, और वो सच्चा वैराग्य ज्ञान से ही होगा, बिना ज्ञान के नहीं होता है। क्लेश का आधार पर का अनुराग, जितने भी क्लेश हैं वे सब राग से उत्पन्न किए गए हैं, सिवाय राग परिणाम के और कुछ क्लेश है ही नहीं। कहते हैं राग आग दहे सदा, रात दिन की सब प्रवृत्तियों में इसका अंदाज कर लो। जब जब भी इसे कोई क्लेश हो रहा होगा तब किसी न किसी परवस्तु के विषय में राग करने से क्लेश होता है, या तो शरीर संबंधी वो भी परिवस्तु है, या कोई अन्य हमारे परिवार है, या अन्य कोई है, मित्र है, या अन्य किसी के बारे में सोच रहा है, बारंबार उसी की बात चल रही है, तो कहते कि किसी परवस्तु के विषय में राग करने से क्लेश होता है, सिवाय राग के और कोई कारण नहीं है कि मुझे दुख हो जाए, और राग है व्यर्थ का। दुख का कारण क्या है? राग है। और राग है क्या है? बेकार का, व्यर्थ का है। जो अज्ञान से अपने स्वरूप को न पहचान कर श्रद्धा ही ऐसा बना लेता है यह अमुक परवस्तु मेरी हितकारी है, मूल कारण क्या है? उसने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना और खोटी कल्पना बना ली, श्रद्धा बना ली कि यह परवस्तु मेरी हितकारी है, मेरी है, बस उसे क्लेश होंगे। इस शरीर से पहले नाता छोड़ दो तो सभी अपने आप उसके सबके नाता छूट जाएगा। सारे क्लेश के साधनों को छानते जाइए, सभी के अज्ञान से क्लेश है। क्लेश के साधनों के ना उसके कारणों को अगर हम खोजबीज करेंगे, विचार करेंगे तो यह पता चलेगा कि अज्ञान ही उसका कारण है। भगवान की भक्ति करने हम आते हैं, भगवान की भक्ति विशुद्ध एक यही प्रयोजन है कि हे प्रभु मेरे में राग परिणमन न रहे, यही मैं चाहता हूं। क्या कहते हैं वो भक्ति में? क्या कहते हैं? मेरे में राग न रहे। तो भक्ति का राग रखना कि नहीं रखना? यानी वो चाहते ये भी राग छूट जाए, यथावसर वो भी छूटेगा, क्योंकि छठे गुण स्थान तक तो ये तो भक्ति के परिणाम होंगे, ऊपर के जब अंतरंग में स्थिरता है वहां वो भी छूट जाएंगे। मैं संसार के अन्य पदार्थों को नहीं चाहता हूं, क्योंकि उनके मिलने पर भी आत्मा को शांति नहीं मिलती है, बल्कि अशांति बढ़ती जाती है। मेरे राग भाव न रहे, यही मैं चाहता हूं। प्रभु स्तवन में भक्त की चाह। चाह ने वो उसके अभी चाह ये भी इच्छा है, परंतु ये अमुक प्रकार के उस अवस्था में होगा उसको। चाह ने इच्छा, तो भक्त क्या चाहता है वो बता रहे हैं। स्तवन में कहते हैं ना, स्तवन यानी स्तुति, जो भगवान की बोली जाती है उसको स्तवन कह रहे हैं। आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणति न जाए। आत्मा के अहित क्या है? विषय और कषाय, और मेरी परिणति इनमें न जाए, मेरा उपयोग इनमें न जाए। आत्मा का कल्याण करने वाले अकल्याण करने वाले अहित है ना, कल्याण न करने वाले तो ठीक है, अकल्याण करने वाले चाहिए। वजन की बात नहीं है, कल्याण यानी कोई जो कहें ना विदाउट कुछ कोई नहीं है, मेरा कुछ नहीं कल्याण कर सकता, पर ये अहित कल करने वाला है तो वो तो पूरी चीज है। तो आत्मा का अकल्याण करने वाले ये विषय और कषाय के परिणाम है, इनमें मेरी प्रवृत्ति न हो, बस यही मैं चाहता हूं। इतनी स्वच्छ बुद्धि ज्ञानी पुरुष के हुआ करती है, यानी वो भक्ति भी परिणाम है, वो भी विशिष्ट राग है, परंतु विषय और कषाय में मेरी प्रवृत्ति न जाए इसलिए उसमें है। और वहां से भी वो चाहता तो अपने में लीन होना, परंतु अभी जो कमजोरी के वश ज्ञानी को भी भक्ति के भाव आते हैं। अज्ञानी जन तो लड़के मांगेंगे प्रभु से, वैभव चाहेंगे, मुकदमे की विजय चाहेंगे, यश चाहेंगे और अनेक लौकिक कामनाएं। किंतु ज्ञानी पुरुष यही चाहते हैं कि मेरा जैसा शुद्ध ज्ञान स्वरूप है ऐसा ही मेरा स्वरूप रहे।
कैसा?
हाँ तो जाके क्या भक्ति करने वो तो बात है, क्योंकि ये किसने बताया, ये बताया किसने? हाँ तो हमें ये मार्ग उन्होंने बताया, इसलिए उनके प्रति अहोभाव तो आता ही है। और उनका जब स्वरूप निश्चित करने जाते तब पता चलता है मैं भी ऐसा हूँ, यही बात बता रहे हैं। अन्य कुछ कामना नहीं है, इतनी स्वच्छता सम्यक ज्ञान बिना जग नहीं सकती। सम्यक ज्ञान ही हम आपका वास्तविक शरण है। अपूर्व मिलन, अपनी भक्ति अपने प्रभु ज्ञान के निकट बसा करें, उससे और बढ़कर कोई मिलन नहीं है। ये अपना प्रभु निज प्रभु की बात है, खुद ही खुद से मिल जाए यही अपूर्व मिलन है। दो नहीं, स्वयं ही भेद करके बता रहे हैं। तो ऐसे दो खुद नहीं है, ऐसे इसमें भी आता है ना, अपने में ही यानी मैं अपने को ही जानूं। हाँ ठीक है, परंतु वो दोनों है, परंतु वो पर्याय किसकी है? मेरी ही है ना, तो हम कहेंगे ना मैं ही मेरे को जानूं। वो पर्याय के द्वारा जान रहे वो तो बात है, पर्याय में ही जानना, पर्याय वैसी पर नहीं है, यानी पर्याय और द्रव्य अभेद है, अभेद करके मैं मेरे को ही जान रहा हूँ ऐसा हम कह सकते हैं। यानी वहाँ पर्याय वाली भेद जुदे निकालने की भी जरूरत नहीं है, अभेद है, फिर भी खुद खुद को जानना ये भी भेद हो गया। हाँ, परंतु ये वचन में तो ऐसा भेद होता है। बाकी तो किसी पदार्थ से हित बनाया, प्रेम किया, यह कोई अपूर्व मिलन नहीं है, वह क्लेश को ही देने वाला है। अपने अंतरंग में ऐसा यत्न तो कर लो, गुप्त ही गुप्त अपने आप में ही बसकर स्वाधीन सुगम पुरुषार्थ किया जाना है। ये बिल्कुल स्वाधीन है और सुगम है, उसमें लिए किसी की कोई अपेक्षा नहीं है और कोई रुकावट नहीं उसमें। सारा संसार मिलकर भी मुझे सुखी करने का यत्न करे तो भी नहीं कर सकता। और मैं ही केवल अपने आप आपके बल से ही अपने आप को सुखी होने के लायक ज्ञान रूप प्रयत्न करूं तो, ये प्रयत्न भी ज्ञान रूप ही, उसमें और कुछ नहीं प्रयत्न करना है, तो मैं सुखी हो सकता हूं। सुख के उपाय में दूसरी कोई बात है ही नहीं। विशुद्ध ज्ञान में विरागता का स्वागत, विरागता, राग से रहितपना, विराग। ये ज्ञानी वैरागी पुरुष विरक्त होकर इस संपदा को छोड़ देते हैं तो इसमें आश्चर्य कुछ नहीं है। हमारी बुद्धि जब तक वैराग्य की ओर नहीं लगती है तब तक ये शांति के सब काम अटपटे मालूम होते हैं। अनंत तीर्थंगों ने क्या किया अंत में? यही वैराग्य, उन्होंने परिग्रह का परित्याग किया। पर हमारी समझ में वह बात ठीक न जचे तो हम अपने को प्रभु के भक्त कहने के अधिकारी नहीं है। यानी वो अच्छा नहीं लगता है तो वे तो परिग्रह का त्याग करके भगवान हुए हैं और हम तो उनके भक्त कहलाते हैं और हम तो परिग्रह बढ़ाने के पीछे चले हैं, तो कहते उनको हम उनके भक्त नहीं कह सकते। हमारी निरंतर यह भावना रहे दर्शन करते हुए, सामायिक चाहिए, सामायिक पूजन का, सामाजिक पूजन आदि करते हुए अथवा पर में भी बैठे हुए यह भावना जगे कि हे प्रभु, मुझ में इस भाव का अपूर्व बल शीघ्र प्रकट हो कि राग द्वेष का मेरे में निवास न हो। ये सामायिक चाहिए ना। मैं शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप को निरखता रहूं, इस अंतः प्रयोग में ही मोक्ष मार्ग समाया हुआ। यही तो प्रयोग है, अपने ज्ञानानंद स्वरूप को ही निरखना, यानी उसी का अनुभव लेते रहना। अभी हम इसको जरा जांचेंगे, 104 नंबर को। श्रियम त्यजन, जड़ह चाहिए, जंग, ये क्या किया उसको, जंग कुछ नीचे जड़ और यहाँ ऊपर आगे वाला वो फिर डाला उसमें ग जैसा। जड़ह चाहिए, हाँ, आपके किसमें क्या लिखा है, जड़ह नीचे वाला, नीचे आगे दो चाहिए, विसर्ग चाहिए, विसर्ग नहीं, वो एक एक बिंदी है, वो नीचे वाली साइड में चाहिए। शोक जड़, विस्मयम सात्विक सताम, सताम नहीं, सताम नहीं, सताम, एक मिनट, सताम, स और ताम लिखा है उन्होंने, करोति तत्व विचित्रम, विचित्रम न शोकम न च विस्मयम, पढ़ेंगे। श्रियं त्यजन् जडः शोकं विस्मयं स्वात्विकः सतां करोति तत्व विचित्रं न शोकं न च विस्मयं। अर्थ पढ़ते हैं, मूर्ख पराक्रम रहित पुरुष है, सोतो, मोतो लिखा है, सोतो लक्ष्मी को त्याग करता संता शोक करे हैं। जड़े ने वो जो मूर्ख, उसको कहा जड़। बहुरी सत्य पराक्रम का धारी पुरुष है सो गर्व करे हैं। बहुरी तत्वज्ञानी पुरुष तिस लक्ष्मी को त्यागता संता न शोक करे है और न गर्व करे हैं, सो यह बड़ा आश्चर्य है। भावार्थ, संसारी जीवनी के धनादि का त्याग होते दो प्रकार भाव होई, जो पराक्रम रहित है और वाकई कोई कारण पाई धनादि का त्याग हो है तहां वाकई तो शोक हो है। वाकई ने उसके यह कार्य क्यों भया, ऐसे अंतरंग विषय खेद उपचे है। बहुरी जो पराक्रम का धारक है और वाकई कोई कारण ते वह अपने उत्साह ते धनादि का त्याग हो है तहां वाकई गर्व हो है, मैंने ऐसा कार्य किया, ऐसे अंतरंग विषय अहमेव हो है। बहुरी देखो आश्चर्य, जो तत्वज्ञानी पुरुष है ताके धनादि का त्याग होते शोक और गर्व दो ही नहीं हो है। मान लेते उसने कहीं दान लिया, नहीं उसको उसमें कोई अभिमान होता है ना, कोई ऐसे ही चला जाए तो शोक हो जाता है। जाते ज्ञानी धनादि को परद्रव्य जाने हैं, बहुरी परद्रव्य का त्याग होते खेद और गर्व दो ही नहीं कीजिए है, ताते ज्ञानी शोक गर्व रहित हुआ परद्रव्य को त्यागे है। अब यहां से हम कल पढ़ेंगे, अभी अर्थ से यानी वो प्रवचन से 104 के प्रवचन से जा। हाँ नच विस्मयम नहीं, विस्मय करता है सात्विक सताम, वो सताम नहीं है, सहताम, सहताम मुझे उसको छोड़कर विस्मय। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।